इतनी भी क्या जल्दी थी कॉल डिस्कनेक्ट करने की, हमारी पूरी बात तो सुन लेती। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता को दोबारा कॉल करने जा रहा था और वो इप्सिता का नंबर डायल कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु का फोन बजा। उसने जैसे ही अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ देखा, कॉल पिकअप करते हुए उसने कहा, हाँ समर्थ बोलो क्या बात है। समर्थ ने अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर कहा, क्या हुआ बड़े टेंस लग रहे हो, अभी तक इप्सिता भाभी से तुम्हारी बात नहीं हुई क्या। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन शायद वो कुछ ज्यादा ही नाराज है, इसीलिए वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। समर्थ ने उसकी बात सुनकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब इतनी बड़ी बात हुई है, तुमने उनका दिल दुखाया है, वजह चाहे कुछ भी हो लेकिन उनका इतना नाराज होना तो बनता है। खैर तुम्हें क्या लगता है, वो तुम्हारी बात अगर सुनेंगी तो क्या उन्हें इस बात पर यकीन होगा। अभिमन्यु ने पूरे विश्वास के साथ कहा, एक बार अगर वो हमसे मिलने और बात करने आएंगी तो मैं उन्हें अपनी बात समझा दूंगा। समर्थ ने उसके लिए खुश होते हुए कहा, चलो अच्छी बात है। अभिमन्यु ने फिर से पूछा, तुमने हमें कॉल क्यों किया, सब ठीक तो है ना वहाँ। समर्थ ने उसे बताया, हाँ अभी तक तो सब ठीक है लेकिन मुझे ये खबर मिली है कि यहाँ राजमहल में कुछ बड़ा होने वाला है। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी उसकी भौहें से कुड़ गईं। अभिमन्यु ने तुरंत समर्थ से पूछा, क्या होने वाला है, क्या खबर मिली है तुम्हें, सब कुछ बताओ हमें, हम सुन रहे हैं। समर्थ ने अभिमन्यु की बात सुनकर उसे पूरी बात बताई। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है आगे जो कुछ भी हो हमें बताते रहना। इतना बोलकर अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और वो किसी को कॉल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर राजमहल में मासा अभिमन्यु के जाने के बाद से काफ़ी परेशान थी। उन्होंने अभिमन्यु से बात करने की कई बार कोशिश की लेकिन अभिमन्यु ने उनसे साफ साफ बात करने से इनकार कर दिया। इस समय राजमहल का माहौल बिल्कुल अलग था, सब कुछ पहले से काफ़ी बदल चुका था। मासा अपने कमरे में थी तभी महल के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि महल के दरवाजे पर कोई बारात आई हो। ढोल और शहनाइयाँ बजाने की आवाज़ उन सभी के कानों में पड़ रही थी लेकिन उनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ऐसा माहौल ही नहीं था वहाँ पर। अर्पिता ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी उसने हैरानी से बाहर की तरफ देखते हुए कहा, ये शोर शराबा कैसा है, ऐसा लग रहा है कोई दरवाजे पर ढोल नगाड़े बजा रहा हो। मासा अपने बिस्तर से उठते हुए बोली, हाँ जाकर देखिए इतना शोर कौन मचा रहा है राजमहल में। मासा उठने ही जा रही थी तभी अर्पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा, मासा आप रुकिए हम देखते हैं। इतना बोलकर अर्पिता कमरे से बाहर निकली और महल के आंगन में बने बड़े से छज्जे पर जाकर बाहर की तरफ देखा। सामने नरेंद्र खड़े थे और वहां पर महल के आसपास कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स और महल के साथ साथ आसपास के भी बाकी लोग मौजूद थे। महल के सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी और नरेंद्र के दोनों तरफ खड़े हुए दो नौकर बड़ा सा ढोल नगाड़ा बजा रहे थे। अर्पिता ये सब देखकर बड़ी हैरानी से बोली, ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही ढोल और नगाड़े की आवाज़ हुई मासा भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उन्होंने जैसे ही नरेंद्र को देखा वो काफ़ी खुश लग रहे थे। उन्होंने अपने सामने खड़े मीडिया रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए कहा, हमने आप सबको यहाँ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया है। राजमहल में अब एक राजा की ज़रूरत है। हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राजमहल में किसी राजा का ना होना कितनी बड़ी बात होती है। कुंवर सा जो राजा बनने वाले थे वो इस राजगद्दी के लायक भी नहीं है क्योंकि उन्होंने ना ही शादी की और ना ही वो इस समय राजमहल में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अब तक सबको यही लगता था कि कुंवर अभिमन्यु राजगद्दी के इकलौते वारिस हैं लेकिन ऐसा नहीं है और उन्हें एक मौका भी दिया जा चुका है और हम सबको पता चल गया है कि जब कुंवर सा अभिमन्यु इस राजगद्दी को संभालने के लायक नहीं है तो अब समय आ गया है कि इस राजमहल का बड़ा बेटा राजगद्दी को संभाले। जैसे ही नरेंद्र ने ये बात कही मासा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नरेंद्र ये सब क्या बोल रहे हैं। अर्पिता हैरानी से मासा और नरेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, मासा ये सब क्या है। अभिमन्यु की माँ ने अर्पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी नरेंद्र ने उन सभी मीडिया रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताते हैं। हमने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि हमें बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करना था। दरअसल अब राजमहल में राज्याभिषेक होगा, राजवंश परिवार का राजा बनेगा हमारा बेटा और इस राज परिवार का वारिस अभिनव जो इस राज परिवार का बड़ा बेटा है। इतना बोलते ही नरेंद्र ने अपने बगल में खड़े एक लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया। वो लड़का दो कदम आगे चलकर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने महंगे सनग्लासेस लगा रखे थे और शर्ट के ऊपर महंगी ब्राउन कलर की लेदर जैकेट पहन रखी थी। जीन्स के साथ उसके मैचिंग शूज भी काफी जंच रहे थे। उसका पूरा हुलिया किसी अमीर बाप की औलाद की तरह लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। जितने भी रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे वे सब उसकी फोटो क्लिक करते हुए बोले, मिस्टर नरेंद्र राजवंशी क्या ये आपके बेटे हैं। नरेंद्र ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, ये हमारी दोनों बेटियों से बड़ा है और इसका नाम अभिनव राजवंशी है। जैसे ही नरेंद्र ने ये बात कही मासा की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने उस लड़के को घूरते हुए देखा। तभी एक दूसरे रिपोर्टर ने कहा, आज तक तो हमें आपके बड़े बेटे के बारे में कभी कोई खबर नहीं मिली। अभी तक तो सब कुछ कुंवर अभिमन्यु ही संभालते आए थे तो फिर अब अचानक से ये कैसे राजा बन सकते हैं। नरेंद्र ने जैसे ही उस मीडिया रिपोर्टर की बात सुनी उन्होंने उसे घूरते हुए देखा और कहा,
क्योंकि हमारा बेटा राजवंश परिवार की कुछ साजिशों के बीच फंस गया था और कुछ दिनों के लिए हम सब से दूर हो गया था, लेकिन अब और नहीं, अब वो वापस लौट आया है अपनी सही जगह पर। इतने बोलकर सारे मीडिया रिपोर्टर्स आपस में बात करने लगे। तभी एक मीडिया रिपोर्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब है? क्या आप हमें पूरी बात बताएंगे? नरेंद्र ने उन सबकी तरफ देखकर कहा, जरूर बताएंगे, लेकिन आज नहीं, राज्याभिषेक वाले दिन। अभी हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई है और आज से एक महीने बाद हमारे बेटे अभिनव राजवंशी का राज्याभिषेक होगा। वो इस राजमहल का नया राजा बनेगा। अब हमें किसी से और कोई बात नहीं करनी है। इतना बोलकर नरेंद्र ने अभिनव का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधे महल के अंदर आ गया। मासा ने जैसे ही नरेंद्र को अंदर आते हुए देखा, वो तुरंत पीछे मुड़ी और राजमहल के अंदर आई। वो सीधे हॉल की तरफ आ रही थी। तभी जैसे ही वो हॉल में नीचे उतरी, उन्होंने देखा कि पल्लवी अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर राजमहल की दहलीज पर खड़ी है। जैसे ही नरेंद्र और अभिनव राजमहल की दहलीज पर आकर रुके, पल्लवी उन दोनों की आरती करने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वहीं नरेंद्र की दोनों बेटियां बड़ी ही हैरानी से वहां पर खड़ी थीं। अभिनव को देखकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज थीं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने अपने भाई के बारे में कभी कोई बात नहीं सुनी थी। आज अचानक से अपने सामने अपने बड़े भाई को देखकर वे दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थीं। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वे लोग क्या करें और क्या नहीं, इसीलिए उन दोनों ने ही चुप रहना सही समझा। वहीं अर्पिता मासा के साथ नीचे उतर कर आई। तब तक पल्लवी ने उन दोनों की आरती की और उन्हें तिलक करके कहा, मेरा बेटा वापस आ गया इतने सालों के बाद, और मेरे पति भी।
इतना बोलकर वो आगे बढ़ी और अभिनव को गले लगा लिया। नरेंद्र भी मासा की तरफ देखकर हॉल के अंदर आ गए। मासा अभी वहीं खड़ी ही थी। तभी नरेंद्र मासा की आराम कुर्सी पर आकर बैठ गया, अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए कहा, कैसी हैं भाभी सा? आपने पिछले 6 महीनों में हमें याद तक किया नहीं, यहां तक कि आप तो हमें एक बार जेल में मिलने तक नहीं आई। मासा ने नरेंद्र की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, तुम जेल से बाहर कैसे निकले? जो काम तुमने किया है उसके बाद तो हमें नहीं लगता तुम्हें यहां दोबारा वापस भी आना चाहिए था। मासा की ये बात सुनकर नरेंद्र जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या लग रहा था आपको कि मैं कभी जेल से बाहर ही नहीं निकलूंगा? ऐसा कैसे सोच लिया आपने भाभी सा? अभिमन्यु की माँ उसकी ये बात सुनकर 2 कदम आगे बढ़ी और उन्होंने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, नरेंद्र तुम क्या कह रहे हो? सबसे पहली बात, तुमने अभी मीडिया के सामने जो बात कही है वो सब क्या है, और ये लड़का कौन है? हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये तुम्हारा बेटा नहीं है। मासा ने जैसे ही ये बात कही, पल्लवी उनके सामने आकर बोली, क्यों भाभी सा, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? भगवान ने सिर्फ आपको ही बेटा पैदा करने का आशीर्वाद दिया है क्या? आप भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि हम आपसे पहले माँ बनी थी। हमारा अभिनव अभिमन्यु के होने से 3 महीने पहले हो गया था, लेकिन उसे वक्त। इतना बोलकर पल्लवी रोने लगी और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। तभी नरेंद्र कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और मासा के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, लेकिन भाभी सा, आपने और भाई सा ने मिलकर हमारे बेटे को मरा हुआ घोषित कर दिया, उसे हमारी नज़रों से दूर कर दिया। लेकिन भाभी सा, आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सबके सामने आ ही जाता है। इतना बोलकर नरेंद्र ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। अर्पिता हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगी। मासा ने नरेंद्र और पल्लवी की तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो? नरेंद्र, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हमने कोई झूठ नहीं बोला है। तुम अपने भाई सा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? तुमने खुद अपने बेटे को अपनी गोद में लिया था और देखा था कि वो जिंदा नहीं था। ये बात सच है, तुम इस बात को झुठला नहीं सकते। नरेंद्र ने मासा की ये बात सुनकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, झूठ है ये। भाईसा और आपने मिलकर हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया था ताकि आपका बेटा राजवंश राज परिवार का दूसरा राजा बन सके, लेकिन नहीं, भगवान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब मैं ना सही, लेकिन मेरा बेटा बनेगा राजवंश राज परिवार का दूसरा राजा। अभिनव, जो चुपचाप खड़ा था, वो मासा की तरफ देखने लगा। मासा ने उसे देखते हुए कहा, लड़के, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम राजवंश राज परिवार के नहीं हो। सच सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अर्पिता नरेंद्र की तरफ बड़ी हैरानी से देख रही थी। क्रमशः